नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। प्रमुख वाणिज्यिक वाहन कंपनी अशोक लेलैंड को तमिलनाडु राज्य परिवहन निगम से 552 बस की आपूर्ति का ऑर्डर मिला है। कंपनी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। कंपनी ने बयान में कहा कि अल्ट्रा लो एंट्री बसों को सार्वजनिक परिवहन के उपयोग में लिया जाएगा। अशोक लेलैंड TMS TC को लंबे समय से बस की आपूर्ति करती आ रही है। वो निगम को अब तक लगभग 18,477 बस की आपूर्ति कर चुकी है। अशोक लेलैंड के MD और CEO शेनू अग्रवाल ने कहा, यह ऑर्डर बहुत कुशल और तकनीकी रूप से उन्नत उत्पाद बनाने के हमारे समर्पण को मजबूत करता है। ये सार्वजनिक परिवहन की वृद्धि में योगदान भी देता है। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने अपनी घरेलू और इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए बम्पर सेल का ऐलान किया है। बता दें कि एयर इंडिया एक्सप्रेस से पहले विस्तारा ने भी क्रिसमस सेल की घोषणा की थी। बात करें एयर इंडिया एक्सप्रेस सेल की तो ग्राहक 25 दिसंबर तक टिकट बुक करने पर छूट पा सकते हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस सेल के तहत बुक होने वाली टिकट के लिए ग्राहकों को 8 जनवरी 2024 से 12 अप्रैल 2024 के बीच यात्रा करना होगा। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने एक रिलीज भेजकर जानकारी दी कि छुट्टियों के सीजन को ध्यान में रखते हुए इस सेल का ऐलान किया गया है। सेल में घरेलू रूट्स के लिए 1,799 रुपए की शुरुआती कीमत पर टिकट बुक किए जा सकते हैं। इनमें दिल्ली जयपुर जैसे रूट्स शामिल हैं। इसके अलावा चेन्नई बेंगलुरु बागडोगरा कोलकाता कोची बेंगलुरु हैदराबाद गोवा जैसे बिजी रूट्स के लिए भी सस्ते में फ्लाइट टिकट बुक की जा सकती है। ऑडियो मनोरंजन ऐप पॉकेट FM ने अपने मंच पर योगदान देने वाले लेखकों को भुगतान के लिए 250 करोड़ रुपए का कोष बनाया है। कंपनी ने कहा कि उसके मंच पर शीर्ष 10 लेखक चालू वर्ष के दौरान 2 करोड़ रुपए से अधिक कमाने में सफल रहे हैं। पॉकेट FM के सह संस्थापक और CEO रोहन नायक ने कहा कि ऑडियो श्रृंखला लेखकों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो रही है। ये उन्हें दुनिया भर में लाखों लोगों के साथ अपनी कहानियां साझा करने में सक्षम बनाती है। उन्होंने कहा, मौजूदा लेखकों की सफलता की कहानियों से प्रेरित होकर हर दिन हजारों लेखक हमारे समुदाय में शामिल हो रहे हैं। नायक ने बयान में कहा, अपने लेखकों को समर्थन और पुरस्कृत करने के लिए हमने लेखक समुदाय के लिए 250 करोड़ रुपए का लेखक कोष अलग रखा है। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि वो अपने काम के लिए वित्तीय रूप से प्रोत्साहित हों। अर्थव्यवस्था के लगभग सभी क्षेत्रों को गंभीर रूप से प्रभावित करने वाले कोरोना काल में भारत में बढ़ी जागरूकता के कारण ऑर्गेनिक खाद्य बाजार को काफी बढ़ावा मिला और अब ये करीब 22% सालाना की दर से बढ़ रहा है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक फूड प्रोड्यूसर्स एंड मार्केटिंग एजेंसीज के एक सर्वे में ये तथ्य सामने आया है। सर्वे के मुताबिक COVID-19 महामारी ने हालांकि अर्थव्यवस्था और रोजगार समेत लगभग सभी क्षेत्रों को बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया है, लेकिन स्वास्थ्य और प्रतिरोधक क्षमता को और मजबूत करने के प्रति लोगों की जागरूकता में खासी वृद्धि होने के कारण इसने ऑर्गेनिक खाद्य उत्पाद क्षेत्र को अप्रत्याशित बढ़ावा दिया है। COII के अध्यक्ष DS रावत ने बृहस्पतिवार को बयान में कहा कि ऑर्गेनिक खाद्य क्षेत्र जहां कोरोना काल से पहले 14-15% की दर से बढ़ रहा था, वो अब 22% की दर से बढ़ रहा है। वैश्विक निवेशक इस साल भारतीय रियल एस्टेट में पैसा लगाने को लेकर सतर्क रहे हैं। निजी इक्विटी निवेश 12 दिसंबर तक पूरे पिछले साल की तुलना में 44% घटकर 3 अरब अमेरिकी डॉलर रह गया। नाइट फ्रैंक ने एक रिपोर्ट में ये जानकारी दी। रियल एस्टेट सलाहकार नाइट फ्रैंक इंडियन की ओर से बृहस्पतिवार को जारी आंकड़ों के अनुसार भारतीय रियल एस्टेट बाजार को इस साल 1 जनवरी से 12 दिसंबर के बीच 23 सौदों से PE निवेश में 302.4 करोड़ अमेरिकी डॉलर मिले, जबकि 2022 में ये राशि 535.7 करोड़ डॉलर थी। नाइट फ्रैंक के अनुसार मंदी का कारण वैश्विक भू राजनीतिक अनिश्चितताओं और अमेरिकी फेडरल रिजर्व तथा सेंट्रल बैंक ऑफ कनाडा द्वारा कई बार दरों में बढ़ोतरी के साथ उच्च ब्याज दर है, जिससे अमेरिका तथा कनाडा से निवेश गतिविधियों पर अंकुश लगा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के भीतर माल आवाजाही के लिए ईवे बिल की सीमा को 1 लाख रुपए से घटाकर 50,000 रुपए करने के आदेश को स्थगित करते हुए पुरानी व्यवस्था बहाल कर दी है। एक शीर्ष अधिकारी ने बृहस्पतिवार को ये जानकारी दी। पश्चिम बंगाल के GST आयुक्त खालिद अनवर ने कहा कि ईवे बिल से संबंधित कुछ मसलों पर हितधारकों का पक्ष सुनने के बाद सरकार ने सार्वजनिक हित में ये कदम उठाया है। अनवर ने PTI भाषा से कहा कि नवंबर के मध्य में ईवे बिल की सीमा घटाने वाली अधिसूचना को अगली सूचना तक स्थगित कर दिया गया है। इस तरह राज्य के भीतर माल आवाजाही की सीमा पहले की तरह 1 लाख रुपए बनी हुई है। उन्होंने कहा, पहले जारी अधिसूचना को स्थगित रखने के साथ पश्चिम बंगाल के भीतर माल ले जाने के लिए किसी भी ई वे बिल की जरूरत नहीं होगी। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।